दानियेल अध्याय एक। बाबेल में दानियेल का प्रशिक्षण। यहूदिया के राजा यहोयाकीम के शासन के तीसरे वर्ष में बाबेल के राजा नबूकदनेज़र ने आकर यरूशलेम को घेर लिया और प्रभु ने यहूदिया के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों सहित नबूकदनेज़र के अधीन कर दिया। इन चीजों को वह शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले आया और वह उन्हें अपने देवता के कोषागार में रख दिया। तब राजा ने अपने दरबार के अधिकारियों के प्रधान एशपेनाज को आदेश दिया कि राज परिवार और कुलीन वर्ग के कुछ इसराइलियों को राजा की सेवा में लाया जाए। ये ऐसे जवान हो जिनमें किसी प्रकार का शारीरिक खोट ना हो, सुंदर हो, हर प्रकार की बात सीखने की योग्यता हो, अच्छे जानकार हो, तुरंत समझने वाले हो और राजा के महल में सेवा करने की योग्यता हो। राजा ने प्रधान को आदेश दिया कि इन्हें बाबेल वासियों की भाषा और साहित्य की शिक्षा दे। राजा ने अपने स्वयं के भोजन पदार्थों में से उन्हें प्रतिदिन का भोजन और दाखमधु देने की आज्ञा दी। राजा ने यह भी कहा कि उन्हें 3 वर्ष तक प्रशिक्षित किया जाए और उसके बाद उन्हें राजा के सेवा में लाया जाए। जो चुने गए थे उनमें से कुछ यहूदा के वंश के थे, दानियेल, हननिया, मिशाएल तथा अजरिया। प्रधान अधिकारी ने उन्हें नए नाम दिए, दानियेल को बेलशत्सर, हननिया को शद्रक, मिशाएल को मेशेक तथा अजरिया को अबेदेनगो। पर दानियेल ने यह निश्चय कर लिया कि वह शाही भोजन और दाखमधु सेवन करने के द्वारा स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा और इस प्रकार से अपने आप को अशुद्ध ना करने के लिए उसने प्रधान अधिकारी से अनुमति मांगी। परमेश्वर ने अधिकारी के मन में यह बात डाल दी कि वह दानियेल के प्रति कृपा दृष्टि एवं दया दिखाए। पर अधिकारी ने दानियेल से कहा, मुझे अपने प्रभु राजा का भय है जिन्होंने तुम्हारे खाने पीने की वस्तुओं का निर्धारण किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें तुम्हारे उम्र के दूसरे जवानों से कमजोर देखे और तब तुम्हारे कारण राजा मुझे मार डाले। तब दानियेल ने उस पहरेदार से कहा जिसे प्रधान अधिकारी ने दानियेल, हननिया, मिशाएल तथा अजरिया के देखभाल के लिए ठहराया था, कृपा कर आप 10 दिन तक अपने सेवकों को परख कर देखे, खाने के लिए हमें सिर्फ साग पात और पीने के लिए सिर्फ पानी दिया जाए। तब हमारे शरीर से उन जवानों की तुलना किया जाए जो शाही भोजन खाते हैं और उसके बाद आपको जैसा दिखे उसके अनुसार आप अपने सेवकों से व्यवहार करें। पहरेदार ने उसकी बात मान ली और 10 दिन तक उन्हें परख कर देखा। 10 दिन के बाद वे उन जवानों से ज्यादा स्वस्थ थे और हष्टपुष्ट दिखे जो शाही भोजन करते थे। इसलिए पहरेदार ने उनके लिए ठहराए उत्तम भोजन और दाख मधु को हटाकर उन्हें बदले में साग पात देने लगा। इन 4 जवानों को परमेश्वर ने सब प्रकार के साहित्य और विद्या का ज्ञान और समझ दी और दानियेल सब प्रकार के दर्शनों तथा स्वप्नों को भी समझ लेता था। तब जितने दिन बाद राजा ने उन जवानों को अपनी सेवा में लाने के लिए कहा था उतने दिनों के पूरे होने पर प्रधान अधिकारी उन्हें नबूकदनेज़र के सामने ले गया। राजा ने सब जवानों से बातें की और उसकी नज़र में दानियेल, हननिया, मिशाएल और अजरिया के बराबर कोई अन्य जवान ना ठहरा, इसलिए वे राजा की सेवा में चुन लिए गए। बुद्धि और समझ के बारे में राजा ने उनसे जितने भी प्रश्न किए वे राजा के सारे राज्य के सब ज्योतिषियों एवं तांत्रिकों से 10 गुणा उत्तम पाए गए। और दानियेल राजा कोरेश के शासनकाल के पहले साल तक वहां सेवा करता रहा। दानियेल अध्याय 2। नबूकदनेज़र का स्वप्न। नबूकदनेज़र ने अपने शासनकाल के 2 साल में स्वप्न देखे जिससे उसका मन व्याकुल हो गया और वह सो ना सका। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि जादूगरों, टोनों, तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। जब वे आकर राजा के सामने खड़े हुए तो राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है जो मुझे व्याकुल कर रहा है और मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तब ज्योतिषियों ने राजा को उत्तर दिया, राजा चिरंजीवी हो, आप अपना स्वप्न अपने सेवकों को बताइए और हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा ने ज्योतिषियों को उत्तर दिया, मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है, यदि तुम लोग मुझे स्वप्न सहित उसका अर्थ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे घरों को कचरे के ढेर में बदल दूंगा। पर यदि तुम स्वप्न को बताकर उसका अर्थ भी बताते हो तो तुमको उपहार और इनाम और बहुत आदर मान दिया जाएगा। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। एक बार फिर उन्होंने उत्तर दिया, राजा अपना स्वप्न अपने सेवकों को बताए और हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा ने उत्तर दिया, मुझे पूरा निश्चय हो गया है कि तुम लोग समय को टालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है, यदि तुम मुझे स्वप्न नहीं बताते हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही दंड है। यह आशा करते हुए कि परिस्थिति बदलेगी, तुम लोगों ने मुझसे झूठी और बुरी बातें कहने का षड्यंत्र रचा है। इसलिए अब तुम मुझे मेरा स्वप्न बताओ और तब मैं जान लूंगा कि तुम मुझे उस स्वप्न का अर्थ भी बता सकते हो। ज्योतिषियों ने राजा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो राजा के इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सके। पर तो भी ना तो किसी बड़े और शक्तिशाली राजा ने किसी जादूगर या टोना या ज्योतिषियों से कभी इस प्रकार की कोई बात पूछी है। राजा जो बात पूछ रहे हैं वह बहुत कठिन है, देवताओं को छोड़ और कोई राजा को यह बात नहीं बता सकता, और देवता मानव प्राणी के बीच नहीं रहते। यह सुनकर राजा इतना क्रोधित और आग बबूला हो गया कि उसने बाबेल के सब बुद्धिमान लोगों को मार डालने की आज्ञा दे दी। इसलिए सब बुद्धिमान लोगों को मार डालने का आदेश निकाला गया और लोगों को दानियल तथा उसके मित्रों के खोज में भेजा गया कि वे भी मार डाले जाएं। जब राजा के अंगरक्षकों का प्रधान आर्योक बाबेल के बुद्धिमान लोगों को मार डालने के लिए निकला था तो दानियल ने उससे बुद्धिमानी और व्यवहार कुशलता से बात की। उसने राजा के अधिकारी से पूछा, राजा ने ऐसा कठोर आदेश क्यों निकाला है। तब आर्योक ने दानियल को वह बात बताई। यह जानकर दानियल राजा के पास गया और कुछ समय देने की मांग की ताकि वह राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बता सके। तब दानियल अपने घर लौटा और उसने अपने मित्रों हननिया, मिशाइल तथा अजरिया को इस विषय में बताया। उसने उनको उत्साहित किया कि वे स्वर्ग के परमेश्वर से इस रहस्य के बारे में कृपा करने की विनती करें ताकि वह और उसके मित्र बाबेल के बाकी बुद्धिमान लोगों के साथ ना मार डाले जाए। रात के समय वह रहस्य एक दर्शन के रूप में दानियल पर प्रकट हुआ। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की और कहा, परमेश्वर के नाम की महिमा सदा सर्वदा होती रहे, क्योंकि बुद्धि और शक्ति उसकी है। वही है जो समय एवं ऋतुओं को बदलते हैं, वे राजाओं को गद्दी से हटाते और दूसरों को गद्दी पर बैठाते हैं। वे बुद्धिमान को बुद्धि और समझदार को ज्ञान देते हैं। वे गुड़ और छिपी बातों को प्रकट करते हैं। वे जानते हैं कि अंधेरे में क्या रखा है और उनके साथ प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता और आपकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बुद्धि एवं शक्ति दी है। आपने मुझे वह बात बताई है जो हमने आपसे पूछी। आपने हम पर राजा के स्वप्न को प्रकट किया है। दानियल स्वप्न का अर्थ बताता है। तब दानियल आर्योक के पास गया, जिसे राजा ने बाबेल के बुद्धिमान लोगों को मार डालने के लिए नियुक्त किया था, और उसने आर्योक से कहा, बाबेल के बुद्धिमान लोगों को मार डालने का काम रोक दीजिए। मुझे राजा के पास ले चलिए और मैं राजा को उनके स्वप्न का अर्थ बताऊंगा। आर्योक तुरंत दानियल को राजा के पास ले गया और उसने राजा से कहा, यहूदिया से बंधुआई में आए लोगों के बीच मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बता सकता है। राजा ने दानियल से पूछा, जिसे बेलशत्सर भी कहा जाता था, क्या तुम इस योग्य हो कि मैंने स्वप्न में जो देखा है उसे और उसका अर्थ बता सकूं? दानियल ने उत्तर दिया, राजा जिस रहस्य के बारे में पूछ रहे हैं उसके बारे में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, ज्योतिषी, जादूगर या भविष्य बताने वाला राजा को कुछ नहीं बता सकता। लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करते हैं। उन्होंने ने ही राजा नबूकदनेज़र को दिखाया है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जब आप अपने पलंग पर लेटे हुए थे तब आपने जो स्वप्न और दर्शन देखे वे ये हैं। महाराज, जब आप अपने पलंग पर लेटे थे तब आपका मन भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर हो गया और रहस्यों के प्रकट करने वाले ने आपको दिखाया कि भविष्य में क्या होने वाला है। जहां तक मेरी बात है तो यह रहस्य मुझ पर इसलिए प्रकट नहीं किया गया कि मेरे पास किसी और जीवित व्यक्ति से ज्यादा बुद्धि है, पर इसलिए कि महाराज को रहस्य का अर्थ मालूम हो जाए और आप समझ जाए कि आपके मन में क्या आया था। महाराज, आपने देखा कि आपके सामने एक बड़ी मूर्ति खड़ी थी, एक बहुत बड़ी चोंधियाने वाली मूर्ति, दिखने में अद्भुत। उस मूर्ति का सिर शुद्ध सोने से बना था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांग कांसे की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ सेंके गए मिट्टी के थे। जब आप देख रहे थे तो एक चट्टान बिना किसी मानवीय प्रयास के अपने आप कटकर आई और उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पांव को ऐसी ठोकर मारी कि वे चूर चूर हो गए। तब लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी और सोना सब टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए और ग्रीष्मकाल में खलिहान के भूसे के समान हो गए। हवा उनको ऐसे उड़ा ले गई कि उनका कोई छोटा टुकड़ा भी ना बचा। पर जिस चट्टान ने मूर्ति को ठोकर मारी थी वह चट्टान एकाएक बहुत बड़ा पहाड़ बन गई और सारी पृथ्वी में फैल गई। यही था आपका स्वप्न और अब हम राजा को उसका अर्थ बताएंगे। हे महाराज, आप तो राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको राज्य और अधिकार और शक्ति और महिमा दी है। आपके अधीन उन्होंने सब मानव प्राणी और भूमि के जानवर और आकाश के पक्षियों को कर दिया है। वे जहां कहीं भी रहते हैं परमेश्वर ने आपको उनके ऊपर शासक ठहराया है। मूर्ति के सोने का वह सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरे राज्य का उदय होगा जो आपके राज्य से निचले स्तर का होगा। उसके बाद एक तीसरे राज्य का उदय होगा जो कांस्य का प्रतिरूप होगा, जिसका शासन संपूर्ण पृथ्वी पर होगा। आखिरी में एक चौथा राज्य होगा जो लोहे की तरह मजबूत होगा, क्योंकि लोहा सब चीजों को तोड़ता और चूर चूर कर देता है। और जैसे कि लोहा चीजों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, वैसे ही यह राज्य भी दूसरे सभी राज्यों को कुचलकर टुकड़े कर देगा। जैसा कि आपने देखा कि पांव और उंगलियां कुछ सेके गए मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इसलिए यह एक विभाजित राज्य होगा। फिर भी इसमें कुछ लोहे का बल होगा, जैसा कि आपने लोहे को मिट्टी के साथ मिला हुआ देखा। जैसे कि पांव की उंगलियां कुछ लोहा और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए यह राज्य कुछ तो मजबूत और कुछ निर्बल होगा। और जैसा कि आपने लोहे को सेंके गए मिट्टी के साथ मिला हुआ देखा, वैसे ही लोगों का मिश्रण होगा और उनमें एकता ना होगी, क्योंकि लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता। उन राजाओं के समय में स्वर्ग के परमेश्वर एक ऐसे राज्य को स्थापित करेंगे जो कभी नष्ट ना होगा और ना ही इस पर किसी अन्य का शासन होगा। यह राज्य उन सब राज्यों को चूर चूर कर देगा और उनका अंत कर देगा, पर यह स्वयं सदाकाल तक बना रहेगा। यह उस चट्टान के दर्शन का अर्थ है जो मनुष्य के हाथों नहीं किंतु अपने आप एक पहाड़ से टूटकर अलग हुई थी, और जिसने लोहा, कांसा, मिट्टी, चांदी और सोना को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। महान परमेश्वर ने राजा को दिखाया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सत्य है तथा इसका अर्थ विश्वास योग्य है। तब राजा नबूकदनेज़र ने दानियल को साष्टांग दंडवत किया और उसे आदर दिया और आज्ञा दी कि दानियल को भेंट चढ़ाई जाए और उसके सामने सुगंधित धूप जलाया जाए। राजा ने दानियल से कहा, निश्चित रूप से तुम्हारे परमेश्वर, देवताओं के परमेश्वर और राजाओं के प्रभु और रहस्यों के प्रकट करता है, क्योंकि तुम इस रहस्य का अर्थ बताने में योग्य ठहरे। तब राजा ने दानियल को एक ऊंचे पद पर ठहराया और उसे बहुत सारे कीमती उपहार दिए। राजा ने उसे सारे बाबेल प्रदेश का शासक बनाया और बाबेल के सब बुद्धिमान लोगों के ऊपर उसे अधिकारी ठहराया। और दानियल के अनुरोध पर राजा ने शद्रक, मेशेक तथा अबेदेनगो को बाबेल प्रदेश पर प्रशासक नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राज दरबार में बना रहा। दानियल अध्याय 3। सोने की मूर्ति और धधकती हुई भट्टी। राजा नबूकदनेज़र ने एक सोने की मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई लगभग 25 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर थी, और उसने उसे बाबेल प्रदेश में दूरा के मैदान में स्थापित किया। तब उसने हाकिमों, प्रधानों, राज्यपालों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायाधीशों, जिलाधीशों और राज्य के दूसरे सब अधिकारियों को बुलवाया कि वे आकर उस मूर्ति के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो जिसे उसने स्थापित किया था। अतः हाकिम, प्रधान, राज्यपाल, सलाहकार, खजांची, न्यायाधीश, जिलाधीश और राज्य के दूसरे सब अधिकारी उस मूर्ति के प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए जिसे राजा नबूकदनेज़र ने स्थापित किया था, और वे सब उस मूर्ति के सामने खड़े हुए। तब घोषणा करने वाले ने ऊंची आवाज में यह घोषणा की, जाति जाति और हर भाषा के लोगों, तुम्हें यह करने की आज्ञा दी जाती है, जिस समय तुम लोग नरसिंगा, बांसुरी, सितार, सारंगी, वीणा, शहनाई और सब प्रकार के संगीत की आवाज सुनो, उसी समय तुम गिरकर सोने के उस मूर्ति की आराधना करो जिसे राजा नबूकदनेज़र ने स्थापित किया है। जो कोई गिरकर आराधना नहीं करेगा, धधकती आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। इसलिए जब उन्होंने नरसिंगा, बांसुरी, सितार, सारंगी, वीणा और हर प्रकार के संगीत की आवाज सुनी, तब सब जाति और हर भाषा के लोगों ने गिरकर उस सोने की मूर्ति की आराधना की जिसे राजा नबूकदनेज़र ने स्थापित किया था। इसी समय कुछ ज्योतिषी आकर यहूदियों पर दोष लगाने लगे। उन्होंने राजा नबूकदनेज़र से कहा, हे राजा, आप चिरंजीवी हो, आप ही ने यह राज आज्ञा निकाली है कि नरसिंगा, बांसुरी, सितार, सारंगी, वीणा, शहनाई और सब प्रकार के संगीत की आवाज सुनते ही हर व्यक्ति गिरकर सोने की मूर्ति की आराधना करे, किंतु जो कोई गिरकर आराधना नहीं करेगा उसे एक धधकती आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। पर कुछ यहूदी हैं जिन्हें आपने बाबेल प्रदेश के कार्य हेतु ठहराया है, अर्थात शद्रक, मेशेक तथा अबेदेनगो। ए महाराज, इन्होंने आपकी आज्ञा को नहीं माना है। वे ना तो आपके देवताओं की सेवा करते हैं और ना ही आपके द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना करते हैं। गुस्से से आग बबूला होकर नबूकदनेज़र ने शद्रक, मेशक और अबेदेनगो को बुलवाया। तब इन तीनों को राजा के सामने लाया गया और नबूकदनेज़र ने उनसे पूछा, शद्रक, मेशक और अबेदेनगो, क्या यह सच है कि तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते या मेरे द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना नहीं करते हो? अब जब तुम नरसिंगा, बांसुरी, सितार, सारंगी, वीणा, शहनाई और सब प्रकार के संगीत की आवाज सुनो, यदि तुम गिरकर मेरे द्वारा बनाए गए मूर्ति की आराधना करने को तैयार हो तो अच्छी बात है, पर यदि तुम उसकी आराधना नहीं करते हो तो तुम्हें तुरंत एक धधकती आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। तब ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे राजा नबूकदनेज़र, इस विषय में हमें आपके सामने अपने आप का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें धधकती आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है तो हमारा परमेश्वर, जिनकी हम सेवा करते हैं, हमें इससे बचाने में समर्थ हैं, और हे राजा, वह हमें आपके हाथों से भी बचाएंगे। पर यदि वह हमें ना भी बचाए तब भी, हे महाराज, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे या आपके द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। तब नबूकदनेज़र शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ और उसकी भावना उनके प्रति बदल गई। उसने आज्ञा दी कि भट्टी को सामान्य से 7 गुना ज्यादा धधकाया जाए, और उसने अपनी सेना के कुछ सबसे बलिष्ठ सैनिकों को आदेश दिया कि शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो को बांधकर धधकती भट्टी में झोंक दिया जाए। अतः इन तीनों को उनके पहने गए लबादा, पजामा, पगड़ी और अन्य कपड़ों सहित बांधकर धधकती भट्टी में फेंक दिया गया। राजा की दृढ़ आज्ञा थी और भट्टी इतनी गर्म थी कि आग की ज्वाला से वे सैनिक मारे गए जो शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो को भट्टी तक ले गए थे। और ये तीनों व्यक्ति, शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो, अच्छे से बंधे हुए धधकती आग की भट्टी में डाल दिए गए। तब राजा नबूकदनेज़र आश्चर्य में उछलकर खड़ा हो गया और अपने सलाहकारों से पूछा, क्या वे तीन ही व्यक्ति नहीं थे जिन्हें हमने बांधकर आग में डाला था? उन्होंने उत्तर दिया, निश्चित रूप से महाराज। राजा ने कहा, देखो, मैं आग के बीच 4 व्यक्तियों को चलते हुए देख रहा हूँ। वे बंधे हुए नहीं हैं और उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई है, और चौथा व्यक्ति देवताओं के पुत्र जैसे दिख रहा है। तब नबूकदनेज़र धधकती भट्टी के मुहाने के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में कहा, शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो, सर्वोच्च परमेश्वर के सेवकों, बाहर आ जाओ, मेरे पास आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो आग से बाहर निकल आए, और उनके चारों तरफ हाकिमों, प्रधानों, राज्यपालों और शाही सलाहकारों की भीड़ लग गई। उन्होंने देखा कि उन तीनों के शरीर को आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, ना ही उनके सिर का एक भी बाल झुलसा था, उनके कपड़े भी नहीं जले थे और उनसे जलने की कोई गंध नहीं आ रही थी। तब नबूकदनेज़र ने कहा, शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो के परमेश्वर की महिमा हो, जिन्होंने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने सेवकों को बचाया। उन्होंने उस पर भरोसा किया और राजा की आज्ञा की परवाह ना की और अपना प्राण देने तक तैयार थे, इसके बजाय कि वे अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और देवता की सेवा या आराधना करें। इसलिए मैं यह आज्ञा देता हूँ कि किसी भी जाति या भाषा के लोग यदि शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो के परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी कहते हैं तो उनको काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और उनके घरों को कचरे का ढेर कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी देवता नहीं जो इस प्रकार से बचा सके। तब राजा ने शद्रक, मेशेक और अबेदेनगो को बाबेल राज्य में और उच्च पद दिया। दानियेल अध्याय 4। नबूकदनेज़र का एक पेड़ का स्वप्न। राजा नबूकदनेज़र की ओर से सारी पृथ्वी पर रहने वाले जाति जाति और हर भाषा के लोगों को यह वचन, आप सब की बहुत उन्नति हो। सर्वोच्च परमेश्वर द्वारा मेरे लिए किए गए उन अद्भुत चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के बारे में तुम्हें बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। क्या ही बड़े हैं उसके दिखाए चिन्ह, क्या ही महान है उसके आश्चर्य कर्म। उसका राज्य एक सदाकाल का राज्य है, उसकी प्रभुता पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेज़र अपने महल में संतुष्ट और संपन्न था। मैंने एक स्वप्न देखा जिससे मैं भयभीत हो गया। जब मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था तो जो चित्र और दर्शन मेरे मन में आए उनसे मैं भयभीत हो गया। इसलिए मैंने आज्ञा दी कि बाबेल के सारे बुद्धिमान लोग मेरे सामने लाए जाए कि वे मेरे स्वप्न का अर्थ बताएं। जब जादूगर, टोने, तांत्रिक, ज्योतिषी और देवीय शक्ति वाले मेरे पास आए तो मैंने उन्हें अपना स्वप्न बताया, पर वे मुझको उसका अर्थ नहीं बता सके। आखिर में दानियेल मेरे सामने आया और मैंने उसे अपना स्वप्न बताया। उसका नाम मेरे देवता के नाम से बेलशत्सर रखा गया है और पवित्र देवताओं की आत्मा उसमें है। मैंने कहा, हे बेलशत्सर, जादूगरों का मुखिया, मैं जानता हूँ कि पवित्र देवताओं की आत्मा तुम में है और कोई भी रहस्य तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। यह मेरा स्वप्न है, मुझे इसका अर्थ बताओ। ये वे दर्शन हैं जिन्हें मैंने पलंग पर लेटे हुए देखा। मैंने देखा कि पृथ्वी के बीच एक पेड़ लगा है। वह बहुत ऊंचा था। वह पेड़ बड़ा होकर मजबूत हो गया और इसका सिरा आकाश को छूने लगा। इसे सारी पृथ्वी के छोर से भी देखा जा सकता था। इसकी पत्तियां सुंदर थी और इसमें बहुत सारे फल लगे थे और इसमें सबके लिए भोजन था। इसके नीचे जंगली जानवर रहते थे और आकाश के पक्षी इसकी शाखाओं पर बसेरा करते थे। इसमें से हर एक जीव जंतु भोजन पाते थे। पलंग पर लेटे हुए मैंने दर्शन में देखा कि स्वर्ग से एक पवित्र जन एक संदेशवाहक नीचे आ रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, काट डालो इस पेड़ को और इसकी शाखाओं को अलग कर दो, इसकी पत्तियों को गिरा दो और इसके फल को बिखरा दो। जानवर इसके नीचे से भाग जाए और चिड़िया इसकी शाखाओं से उड़ जाए, पर पेड़ के ठूंठ और इसकी जड़ों को लोहे और कांसा से बंधे रहकर जमीन के घास पर भूमि में रहने दो। उसे आकाश की ओस से भीगने दो और उसे पृथ्वी के पौधों के बीच जानवरों के साथ रहने दो। उसका मन बदल दिया जाए और एक मनुष्य के समान उसका मन ना रहे और उसे 7 कालखंड बीतने तक एक जानवर का मन दिया जाए। इस निर्णय का ऐलान संदेशवाहकों के द्वारा किया जाता है। पवित्र जन इस निर्णय की घोषणा करते हैं ताकि जीवित लोग इस बात को जाने कि वह जो सर्वोच्च है वे ही पृथ्वी पर सब राज्यों के ऊपर परम प्रधान है और वे जिसे चाहते हैं उसे उन राज्यों को दे देते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति को उनके ऊपर नियुक्त कर देते हैं। यही है वह स्वप्न जिसे मैं राजा नबूकदनेज़र ने देखा। अब हे बेलशत्सर, मुझे बताओ कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि मेरे राज्य का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मुझे इसका अर्थ नहीं बता सकता, पर तुम बता सकते हो क्योंकि तुम में पवित्र देवताओं की आत्मा है। दानियेल स्वप्न का अर्थ बताता है। तब दानियेल, जिसे बेलशत्सर भी कहा जाता था, थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो गया और उसके विचार उसे भयभीत करने लगे। इसलिए राजा ने कहा, हे बेलशत्सर, मेरे स्वप्न या इसके अर्थ से भयभीत ना हो। बेलशत्सर ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, काश यह स्वप्न सिर्फ आपके शत्रुओं और इसका अर्थ आपके विरोधियों पर लागू होता। वह पेड़ जिसे आपने देखा, जो बड़ा होकर मजबूत हो गया, जिसका सिरा आकाश को छूने लगा था और जिसे सारी पृथ्वी से देखा जा सकता था, जिसकी पत्तियां सुंदर और जिसमें बहुत सारे फल थे, जिससे सबको भोजन मिलता था, जो जंगली जानवरों को आश्रय देता था और चिड़ियां जिसकी शाखाएं पर घोंसला बनाती थी। हे महाराज, वह पेड़ आप हैं, आप बड़े और मजबूत हो गए हैं, आपकी महानता इतनी हो गई है कि यह आकाश को छूने लगी है और आपका राज्य पृथ्वी में दूर दूर तक फैल गया है। हे महाराज, आपने एक पवित्र जन, एक संदेशवाहक को स्वर्ग से नीचे उतरते हुए देखा, जो यह कह रहा था, इस पेड़ को काट डालो और इसे नष्ट कर दो, पर इसके ठूंठ को लोहा और कांसा से बंधे हुए जमीन के घास में रहने दो, तथा इसके जड़ों को भूमि में छोड़ दो, उसे आकाश की ओस से भीगने दो, उसे जंगली जानवरों के साथ रहने दो, जब तक कि उसके लिए 7 कालखंड पूरे ना हो जाए। हे महाराज, यह उसका अर्थ है और यह वह फैसला है जिसे सर्वोच्च परमेश्वर ने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध दिया है। आपको लोगों के बीच से भगा दिया जाएगा और आप जंगली जानवरों के साथ रहेंगे, आप बैल की तरह घास खाएंगे और आकाश की ओस से भीगेंगे। 7 कालखंड के बीतने तक आप इसी स्थिति में रहेंगे और तब आप यह मान लेंगे कि पृथ्वी पर सारे राज्यों के ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर ही परम प्रधान है और वे जिसे चाहते हैं उसे ये राज्य दे देते हैं। पेड़ के ठूंठ को इसके जड़ों सहित छोड़ने की जो आज्ञा दी गई है, उसका अर्थ यह है कि आपको आपका राज्य लौटा दिया जाएगा जब आप यह बात मान लेंगे कि स्वर्ग ही शासन करता है। इसलिए हे महाराज, खुशी से मेरी सलाह को मान लीजिए, आप अपने पापों को छोड़कर भले काम करिए और दुष्टता को छोड़कर सताए हुए लोगों पर दया कीजिए, तब यह हो सकता है कि आपकी समृद्धि होने लगे, स्वप्न पूरा होता है। ये सब बातें राजा नबूकदनेज़र के साथ हुई। 12 महीनों के बाद जब राजा बाबेल के राजमहल के छत पर टहल रहा था, तब उसने कहा, क्या यह वह बड़ा बाबेल नहीं है जिसे मैंने अपने बड़े शक्ति से शाही निवास के रूप में अपने वैभव की महिमा के लिए बनाया है। अभी राजा के ये वचन उसके मुंह से निकले भी नहीं थे कि स्वर्ग से एक आवाज आई, हे राजा नबूकदनेज़र, तुम्हारे लिए यह फैसला किया जाता है, तुम्हारा शाही अधिकार तुमसे छीन लिया गया है, तुम्हें लोगों के बीच से भगा दिया जाएगा और तुम जंगली जानवरों के साथ रहोगे, तुम बैल की तरह घास खाओगे, इसी स्थिति में तुम्हारे लिए 7 कालखंड बीतेगा और तब तुम यह मान लोगे कि सर्वोच्च परमेश्वर ही पृथ्वी पर सब राज्यों के ऊपर परम प्रधान है और वे जिसे चाहते हैं उसे इन राज्यों को दे देते हैं। नबूकदनेज़र के बारे में जो बात कही गई वह उसी घड़ी पूरी हो गई, उसे लोगों के बीच से भगा दिया गया और वह बैल की तरह घास खाने लगा, उसका शरीर आकाश की ओस से भीगता था, यहां तक कि उसके बाल बढ़कर गरुड़ के पंखों के समान और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान हो गए। निर्धारित समय के अंत में मैं नबूकदनेज़र ने स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठाई और मेरी मानसिक अवस्था फिर पहले जैसे हो गई। तब मैंने सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा की, मैंने उसका आदर और प्रशंसा किया जो सदाकाल तक जीवित रहता है। उसकी प्रभुता सदाकाल की है, उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहता है। पृथ्वी के सारे लोगों का कोई महत्व नहीं है, वह जैसा चाहता है वैसा स्वर्ग की शक्तियों और पृथ्वी के लोगों के साथ करता है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता या यह कह नहीं सकता, आपने यह क्या कर डाला। जिस समय मेरी मानसिक अवस्था पहले जैसी हो गई, उसी समय मेरा सम्मान और वैभव भी मेरे राज्य के गौरव हेतु मेरे पास लौट आया। मेरे सलाहकारों और कुलीन लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला और मुझे फिर से मेरे सिंहासन पर बैठाया गया और मैं पहले से भी ज्यादा महान हो गया। अब मैं नबूकदनेज़र स्वर्ग के राजा की स्तुति महिमा और प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि वे जो भी करते हैं सही करते हैं और उनके सब युक्तियां न्याय संगत होती हैं, और जो घमंड से चलते हैं उन्हें वह नम्र बनाने में सामर्थ है। दानियेल अध्याय 5। दीवार पर लिखावट। राजा बेलशत्सर ने अपने 1,000 प्रभावशाली लोगों को एक बड़ा भोज दिया और उनके साथ दाख मधु पी। जब बेलशत्सर दाख मधु पी रहा था तब उसने आदेश दिया कि जो सोने और चांदी के प्याले उसके पिता नबूकदनेज़र ने यरूशलेम के मंदिर से लाए थे उन्हें लाया जाए, ताकि राजा, उसके प्रभावशाली लोग, राजा की पत्नियां और उसकी उपपत्नियां दाख मधु पीने के लिए उनका उपयोग कर सके। इसलिए यरूशलेम के परमेश्वर के मंदिर से निकालकर लाए गए सोने के प्याले लाए गए और राजा और उसके प्रभावशाली लोग, उसकी पत्नियों और उपपत्नियों ने उनमें दाख मधु पान किया। वे दाख मधु पीकर सोने और चांदी, कांसा, लोहा, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति करने लगे। तब अचानक मानव हाथ की उंगलियां प्रकट हुई और राजमहल में दीवट के पास दीवार के पलस्तर पर कुछ लिखने लगी। लिखते हुए उस हाथ पर राजा की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर राजा के चेहरे का रंग उड़ गया और वह इतना डर गया कि उसके पैर ढीले हो गए और कांपने से उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने तांत्रिक, ज्योतिषी और देवीय शक्ति वालों को बुलवाया और उसने बाबेल के उन बुद्धिमान लोगों से कहा, जो कोई इस लिखावट को पढ़ेगा और उसका अर्थ मुझे बताएगा उसे राजसी वस्त्र पहनाया जाएगा और उसके गले में सोने की माला पहनाई जाएगी और उसे राज्य में 3रे नंबर का उच्च पदस्थ शासक बनाया जाएगा। तब राजा के सब बुद्धिमान लोग आए, पर वे उस दीवार पर लिखी बात को पढ़ ना सके और ना ही वे राजा को उसका अर्थ बता सके। इससे राजा बेलशत्सर और भयभीत हो गया और उसका चेहरे का रंग और उड़ गया। इससे उसके प्रभावशाली लोग भी परेशान हो गए। राजा एवं उसके प्रभावशाली लोगों की आवाज सुनकर रानी भोज के कक्ष में आई और कहने लगी, राजा चिरंजीवी हो, आप चिंता ना करें और आपके चेहरे का रंग ना उड़े। आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें पवित्र देवताओं की आत्मा रहती है। आपके पिता के समय में इस व्यक्ति में देवताओं के समान समझ बूझ, बुद्धि और ज्ञान पाई गई थी। आपके पिता राजा नबूकदनेज़र ने उसे जादूगरों, तांत्रिकों, ज्योतिषियों और देवीय शक्ति वालों का मुखिया नियुक्त किया था। उसने ऐसा किया क्योंकि दानियेल नामक यह व्यक्ति के पास, जिसे राजा बेलशत्सर नाम से पुकारते थे, तेज दिमाग और ज्ञान और समझ थी, और उसमें स्वप्नों का अर्थ बताने, पहेलियों को समझाने और कठिन समस्याओं का हल निकालने की योग्यता पाई गई थी। इसलिए दानियेल को बुलवा लीजिए और वह आपको लिखावट का अर्थ बता देगा तब दानियेल को राजा के सामने लाया गया और राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियेल हो और उनमें से एक हो जिन्हें मेरे पिता राजा ने यहूदा से बंधुआई में लाया था? मैंने सुना है कि तुम में देवताओं की आत्मा रहती है और यह भी कि तुम में समझ बूझ, बुद्धि और असाधारण ज्ञान है। बुद्धिमान और तांत्रिक लोग इस लिखावट को पढ़ने और इसका अर्थ बताने के लिए मेरे पास लाए गए, पर वे इसको समझा ना सके। मैंने सुना है कि तुम में अर्थ बताने और कठिन समस्याओं का हल निकालने की योग्यता है। यदि तुम इस लेख को पढ़कर इसका अर्थ मुझे बता सके तो तुम्हें राजसी कपड़े पहनाए जाएंगे और तुम्हारे गले में सोने की माला पहनाई जाएगी और तुम्हें 3रा उच्च पदस्थ शासक बनाया जाएगा। तब दानियल ने राजा को उत्तर दिया, आप अपने उपहारों को अपने पास रखें और अपने पुरस्कारों को किसी और को दे दे, फिर भी मैं यह लिखावट राजा के लिए पढ़ूंगा और उसको इसका अर्थ भी बताऊंगा। हे महाराज, सर्वोच्च परमेश्वर ने आपके पिता नबूकदनेज़र को राजसत्ता, महानता, महिमा और वैभव दिया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद दिया था, इसलिए सारी जाति और हर भाषा के लोग आपके पिता से डरते थे और उनका भय मानते थे। जिन्हें वह प्राण दंड देना चाहता उन्हें वह प्राण दंड देता, जिन्हें वह छोड़ना चाहता उन्हें वह छोड़ देता, जिन्हें वह ऊंचा पद देना चाहता उन्हें वह ऊंचा पद देता, और जिन्हें वह नीचा दिखाना चाहता उन्हें वह नीचा दिखाता। पर जब घमंड से उसका मन फूल गया और उसका हृदय कठोर हो गया, तो उसे राज सिंहासन से हटा दिया गया और उसकी प्रतिष्ठा छीन ली गई। उसे लोगों के बीच से भगा दिया गया और उसे एक जानवर का मन दिया गया। वह जंगली गधों के साथ रहता था और बैल की तरह घास खाता था, और उसका शरीर आकाश के ओस से भीगता था। यह तब तक होता रहा जब तक कि उसने यह ना मान लिया कि पृथ्वी पर सब राज्यों के ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर ही परम प्रधान है, और वे जिसे चाहते हैं उसे उन राज्यों पर शासक ठहराते हैं। पर हे बेलशत्सर, उनके बेटे होकर भी आपने अपने आप को नम्र नहीं किया, यद्यपि आप यह सब जानते थे। वरन आपने अपने आप को स्वर्ग के प्रभु से भी बड़ा बना लिया है। आपने उनके मंदिर से प्यालों को अपने पास मंगा लिया, और आपके प्रभावशाली लोगों ने, आपकी पत्नियों और आपकी उपपत्नियों ने उनमें दाख मधु पिया है। आपने चांदी, सोना, कांसा, लोहा, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की महिमा किया है, जो ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। पर आपने उस परमेश्वर का आदर नहीं किया जिनके हाथ में आपका जीवन और आपके सारे क्रियाकलाप हैं। इसलिए परमेश्वर ने यह हाथ भेजा जिसने यह लेख लिखा है। यह वह लेख है जिसे लिखा गया था, मने मने तकेल फरसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, मने परमेश्वर आपके राज्य करने के दिनों की गिनती कर चुके हैं और इसका अंत आ चुका है। तकेल, आप तराजू पर तोले जा चुके हैं और आपको हल्का पाया गया है। फरसीन, आपके राज्य को बांट दिया गया है और मेदियों तथा फारसियों को दे दिया गया है। तब बेलशत्सर की आज्ञा से दानियल को राजसी कपड़े पहनाए गए, उसके गले में सोने की एक माला पहनाई गई, और राज्य में तीसरे उच्च पदस्थ शासक के रूप में उसकी घोषणा की गई। उसी रात कस्तियों का राजा बेलशत्सर मार डाला गया, और इसके बाद दार्यावेश जो मेदिया था 62 साल के उम्र में उस राज्य का राजा बना। दानियल अध्याय 6। दानियल सिंहों की मांद में। दार्यावेश को यह अच्छा लगा कि वह 120 प्रधान नियुक्त करें जो सारे राज्य में शासन करें, और इन सब के ऊपर 3 प्रशासक हो जिनमें से एक दानियल था। उन प्रधानों को प्रशासकों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया ताकि राजा को किसी प्रकार की हानि ना हो। दानियल अपनी असाधारण योग्यताओं के कारण प्रशासकों और प्रधानों के बीच बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए राजा ने उसे सारे राज्य का शासक बनाने की योजना बनाई। इस पर प्रशासक और प्रधान सरकारी कार्यों में दानियल के क्रियाकलापों के विरुद्ध दोष लगाने का आधार खोजने लगे, पर वे ऐसा ना कर सके। उन्हें उसमें कोई भ्रष्टाचार की बात ना मिली, क्योंकि दानियल विश्वास योग्य था, और वह ना तो भ्रष्टाचारी था और ना ही वह किसी बात में असावधानी बरतता था। आखिर में इन व्यक्तियों ने कहा, उसके परमेश्वर के कानून के विषय को छोड़ हमें और किसी भी विषय में दानियल के विरुद्ध दोष लगाने का आधार नहीं मिलेगा। इसलिए ये प्रशासक और प्रधान एक दल के रूप में राजा के पास गए और उन्होंने कहा, राजा दार्यावेश चिरंजीवी हो। राज्य के सब शाही प्रशासक, मुखिया, प्रधान, सलाहकार और राज्यपाल इस बात पर सहमत हुए कि राजा एक राज आज्ञा निकाले और उस आज्ञा को पालन करने के लिए कहे कि अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति महाराजा को छोड़ किसी और देवता या मानव प्राणी से प्रार्थना करे तो वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। ए महाराज, अब आप ऐसी आज्ञा दे और इसे लिखित में दे दे ताकि यह बदली ना जा सके। मेदियों और फारसियों के कानून के अनुसार जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। तब राजा दार्यावेश ने उस आज्ञा को लिखित में कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि ऐसी आज्ञा निकाली गई है तो वह अपने घर जाकर ऊपर के कमरे में गया जहां खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। दिन में 3 बार घुटना टेक कर उसने अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना किया, जैसे कि वह पहले भी करता था। तब वे व्यक्ति एक दल के रूप में वहां गए और उन्होंने दानियल को परमेश्वर से प्रार्थना करते और मदद मांगते हुए पाया। अतः वे राजा के पास गए और उसे उसके राज आज्ञा के बारे में कहने लगे, क्या आपने ऐसी आज्ञा नहीं निकाली है कि अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति महाराजा को छोड़ किसी और देवता या मानव प्राणी से प्रार्थना करे तो उसे सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, यह आज्ञा तो है जिसे मेदियों एवं फारसियों के कानून के अनुसार रद्द नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने राजा से कहा, दानियल जो यहूदा से लाए गए बंधुआ लोगों में से एक है, हे महाराज, वह आपके और आपके द्वारा निकाले गए लिखित आज्ञा की परवाह नहीं करता है। वह अभी भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। उसने दानियल को बचाने का संकल्प कर लिया था और सूर्यास्त होने तक वह दानियल को बचाने की हर कोशिश करता रहा। तब लोग एक दल के रूप में राजा दार्यावेश के पास गए और उन्होंने उनसे कहा, हे महाराज, आप यह बात याद रखें कि मेदिया और फारसी कानून के अनुसार राजा के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला या राज आज्ञा बदली नहीं जा सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और वे दानियल को लाकर उसे सिंहों की माद में डाल दिए। राजा ने दानियल से कहा, तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम सेवा निष्ठा पूर्वक करते हो वही तुझे बचाए। एक पत्थर लाकर मांद के मुहाने पर रख दिया गया और राजा ने अपने स्वयं की मोहर वाली अंगूठी और अपने प्रभावशाली लोगों की अंगूठियों से उस पर मोहर लगा दी, ताकि दानियल की स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव ना किया जा सके। तब राजा अपने महल में लौट आया गया और उसने पूरी रात बिना कुछ खाए और बिना किसी मनोरंजन के बिताया और वह सो ना सका। बड़े सुबह राजा उठा और जल्दी से सिंहों की मांद पर गया। जब वह मांद के पास पहुंचा तो उसने एक पीड़ा भरी आवाज में दानियल को पुकारा, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तुम्हारे उस परमेश्वर ने तुम्हें सिंहों से बचाकर रखा है जिसकी तुम निष्ठा पूर्वक सेवा करते हो? तब दानियल ने उत्तर दिया, हे राजा, आप चिरंजीवी हो। मेरे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया। और हे महाराज, आपके सामने भी मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तब राजा अति आनंदित हुआ और उसने आज्ञा दी कि दानियल को मांद से बाहर निकाला जाए। और जब दानियल को मांद से ऊपर खींचकर बाहर निकाला गया तो उसमें किसी भी प्रकार का चोट का निशान नहीं पाया गया, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। वे व्यक्ति जिन्होंने दानियल पर झूठा दोष लगाया था वे राजा की आज्ञा पर लाए गए और उन्हें उनकी पत्नियों और बच्चों समेत सिंहों के मांद में डाल दिया गया। और इसके पहले कि ये मांद के तल तक पहुंचे, सिंहों ने झपटकर उन्हें पकड़ लिया और हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब राजा दार्यावेश ने सारी पृथ्वी में सब जाति और हर भाषा के लोगों को यह लिखा, आप सब बहुत उन्नति करें। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में हर जगह के लोग दानियल के परमेश्वर का भय माने और उनका आदर करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है और वह सदाकाल तक बने रहते हैं। उनका राज्य कभी नाश नहीं होगा और उनका प्रभुत्व कभी समाप्त नहीं होगा। वह छुड़ाते हैं और वह बचाते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। उन्होंने दानियल को सिंहों की शक्ति से बचाया है। इस प्रकार दानियल दार्यावेश और फारस देश के कोरेश के शासनकाल में उन्नति करते गए। दानियल अध्याय 7। दानियल का 4 पशुओं का स्वप्न। बाबेल के राजा बेलशत्सर के शासन के पहले साल में दानियल जब अपने पलंग पर लेटा हुआ था, तो उसने एक स्वप्न तथा मन में दर्शन देखे। उसने अपने स्वप्न के सारांश को लिख लिया। दानियल ने कहा, रात में मैंने अपने दर्शन में देखा कि आकाश से चारों दिशाओं से महासागर पर हवा चलने लगी। तब 4 बड़े बड़े पशु समुद्र से निकले और ये एक दूसरे से भिन्न थे। पहला पशु सिंह के समान था, जिसके गरुड़ के समान पंख थे। मेरे देखते ही देखते उसके पंखों को नोच डाला गया और उसे भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान 2 पैरों पर खड़ा किया गया और उसे एक मनुष्य का मन दिया गया। उसके बाद मैंने दूसरे पशु को देखा, जो भालू के समान दिखता था। उसे उसके एक तरफ से उठाया गया और उसके मुंह में उसके दांतों के बीच 3 पसलियां थीं। उसे कहा गया, उठ और संतुष्ट होते तक मांस खा। उसके बाद मैंने एक दूसरे पशु को देखा, जो चीते के समान दिखता था और उसकी पीठ पर पक्षी के समान 4 पंख थे। इस पशु के 4 सिर थे और उसे शासन करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद रात को मैंने अपने दर्शन में एक चौथे पशु को देखा, जो भयंकर, डरावना और बहुत शक्तिशाली था। इसके बड़े बड़े लोहे के दांत थे। वह अपने शिकार को दबाकर खा जाता था और जो कुछ बच जाता था उसे पांव से कुचल डालता था। वह इसके पहले के सब पशुओं से भिन्न था और इसके 10 सींग थे। जब मैं इन सींगों के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने देखा उन सींगों के बीच एक और छोटा सींग था, और इस सींग के निकलने से वहां पहले के 3 सींग अपने जड़ से उखड़ गए। मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य के समान आंखें थी और एक मुंह भी था, जो घमंड से भरी बातें कर रहा था। जैसे कि मैंने देखा वहां सिंहासन रखे गए और वह अति प्राचीन अपने आसन पर बैठा। उसके कपड़े हिम के समान सफेद थे। उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन की तरह थे। उसका सिंहासन आग से ज्वालामय था और सिंहासन के पहियों से लपटे निकल रही थी। उसके सामने से एक आग का दरिया निकलकर बह रहा था। हजारों हजार लोग उसकी सेवा में लगे थे। लाखों लोग उसके सामने खड़े थे। तब न्यायाधीश बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। वह सिंह घमंड से भरी बातें कर रहा था, इसलिए मैं उधर लगातार देखता रहा। मैं तब तक देखता रहा जब तक कि उसका वध करके उसके शरीर को नष्ट ना कर दिया गया और धधकती आग में ना फेंक दिया गया। दूसरे पशुओं का अधिकार छीन लिया गया था, पर कुछ समय के लिए उन्हें प्राण दान दिया गया था। रात को मैंने अपने दर्शन में देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा था। वह अति प्राचीन के पास आया और उसे उनके सामने लाया गया। उसे अधिकार, महिमा और सर्वोच्च शक्ति दी गई। सब जाति और हर भाषा के लोग उसकी आराधना किए। उसका प्रभुत्व चिरस्थाई है, जो कभी खत्म नहीं होगा, और उसका राज्य ऐसा राज्य है जो कभी नाश ना होगा। स्वप्न का अर्थ। मैं दानियल मन में बहुत व्याकुल हुआ और जो दर्शन मैंने अपने मन में देखा उससे मैं विचलित हो गया। वहां खड़े लोगों में से एक के पास मैं गया और उससे इन सारी बातों का अर्थ पूछा। उसने यह कहकर मुझे इन बातों का अर्थ बताया। चार बड़े पशु चार राजा हैं जिनका पृथ्वी पर उदय होगा, पर सर्वोच्च परमेश्वर के पवित्र लोगों को ही राज्य मिलेगा और वे उसे अपने अधिकार में सदाकाल तक रखेंगे। जी हाँ, सदाकाल तक। तब मेरे मन में उस चौथे पशु के अर्थ को जानने की इच्छा हुई जो दूसरे सारे पशुओं से भिन्न था और जो अपने लोहे के दांतों और कांसे के पंजों के साथ बहुत डरावना था। वह पशु जो अपने शिकार को दबाकर खा जाता था और बचे हुए भाग को अपने पांव से कुचल डालता था। मुझे इन बातों का भी अर्थ जानने की इच्छा हुई। उसके सिर के 10 सींग और वह दूसरा सींग जिसके निकल आने से वहां के पहले के 3 सींग गिर गए। यह सींग जो दूसरे सींगों से ज्यादा रोबदार दिखता था और जिसकी आंखें और एक मुंह था जिससे वह घमंड से भरी बातें करता था। जैसा कि मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों से युद्ध कर रहा था और उनको तब तक हराता रहा जब तक कि अति प्राचीन ने आकर सर्वोच्च परमेश्वर के पवित्र लोगों के पक्ष में न्याय का फैसला ना दे दिया। और वह समय आया जब उन्होंने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने मुझे यह अर्थ बताया। वह चौथा पशु एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर प्रकट होगा। यह दूसरे सब राज्यों से भिन्न होगा। यह सारी पृथ्वी को रौंदते और कुचलते हुए नाश कर डालेगा। वे 10 सींग 10 राजा हैं जो इस राज्य से आएंगे। उनके बाद एक और दूसरा राजा आएगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा। वह 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। वह सर्वोच्च परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा और उसके पवित्र लोगों को सताएगा और ठहराए गए समयों और कानूनों को बदलने की कोशिश करेगा। पवित्र लोग एक समय समय और आधा समय के लिए उसके अधीन कर दिए जाएंगे, पर न्यायाधीश बैठेंगे और उसकी शक्ति उससे छीन ली जाएगी और उसे हमेशा के लिए पूरी तरह नाश कर दिया जाएगा। तब सर्वोच्च परमेश्वर के पवित्र लोगों को आकाश के नीचे के सब राज्यों की सत्ता, शक्ति और महानता दे दी जाएगी। उसका राज्य सदाकाल तक बना रहने वाला राज्य होगा और सब शासक उसकी आराधना करेंगे और उसकी बात मानेंगे। यहां उस विषय का अंत होता है। मैं दानियल अपने विचारों से बहुत व्याकुल हो गया और मेरा चेहरा पीला पड़ गया, पर यह बात मैं अपने मन में ही रखी। दानियल अध्याय 8। दानियल का एक मेढे और एक बकरे का दर्शन। राजा बेलशत्सर के शासन के 3रे साल में मैं दानियल पहले के दर्शन के बाद एक और दर्शन देखा। अपने दर्शन में मैंने अपने आप को एलाम प्रदेश के सूजा के किले में देखा। दर्शन में मैं उलाई नहर के किनारे खड़ा था। तब मैंने आंख उठाकर देखा कि नहर के किनारे एक मेढ़ा खड़ा था जिसके 2 सींग थे और ये सींग लंबे थे। इनमें एक सींग दूसरे से बड़ा था और यह बड़ा सींग दूसरे के बाद निकला था। मैंने देखा कि यह मेढ़ा पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की ओर सिर से टक्कर मार रहा था। कोई भी पशु उसके सामने टिक ना सका और ऐसा कोई नहीं था जो उसकी शक्ति से बचा सकता। वह वही करता गया जो उसे उपयुक्त प्रतीत होता। उसने जैसा चाहा वैसा किया और बहुत बड़ा हो गया। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तब मैंने देखा कि अचानक एक बकरा पश्चिम दिशा से आया जिसकी आंखों के बीच एक महत्वपूर्ण सींग था और वह सारी पृथ्वी को पार करके भूमि को बिना छुए आया था। यह बकरा उस 2 सींग वाले मेढ़े की ओर आया जिसे मैंने नहर के किनारे खड़े देखा था और क्रोधित होकर उस मेढ़े को टक्कर मारा। मैंने देखा कि यह बकरा बहुत क्रोधित होकर उस मेढ़े के ऊपर हमला किया और उसे टक्कर मारते हुए उसके 2 सींगों को तोड़ दिया। मेढ़े में इतना बल ही ना था कि वह उस बकरे का सामना कर सके। बकरे ने मेढ़े को गिराकर उसे रौंद डाला और इसकी शक्ति से मेढ़े को कोई बचा ना सका। बकरा बहुत शक्तिशाली हो गया और उसके बलवंत हो जाने पर उसका बड़ा सींग टूट गया और इसके स्थान पर चार महत्वपूर्ण सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक दूसरा सींग निकला जिसकी शुरुआत छोटे रूप में हुई पर शक्ति में यह दक्षिण पूर्व और सुंदर देश की ओर बहुत बढ़ गया। वह तब तक बढ़ा जब तक कि वह आकाश के सेना के पास ना पहुंच गया और उसने तारों की कुछ सेना को नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया और उन्हें रौंद डाला। उसने अपने आप को यहावे की सेना के सेनापति के जैसे बड़ा बना लिया। उसने यहावे को चढ़ाए जाने वाले प्रतिदिन के बलिदान को छीन लिया और उसके पवित्र स्थान को नीचे फेंकवा दिया। विद्रोह के कारण यहावे के लोग और प्रतिदिन का बलिदान उसे दे दिए गए। वह जो कुछ भी करता उसमें उन्नति करता गया और सच्चाई को भूमि पर फेंक दिया गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक दूसरे पवित्र जन ने पहले वाले से कहा, दर्शन को पूरा होने में कितना समय लगेगा? वह दर्शन जिसमें प्रतिदिन के बलिदान विद्रोह जो उजाड़ का कारण बनता है, पवित्र स्थान का समर्पण और यहावे के लोगों का पांव तले रौंदा जाना दिखाया गया है। उसने मुझसे कहा, इसे पूरा होने में 2300 सुबह और शाम लगेंगे, तब पवित्र स्थान फिर से शुद्ध किया जाएगा। दर्शन का अर्थ। जब मैं दानियेल दर्शन को देखकर इसे समझने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक जन खड़ा हुआ जो एक मनुष्य के जैसा दिख रहा था और मैं उलाई नहर से एक मनुष्य की आवाज को पुकारता हुआ सुना, हे गब्रियेल, इस व्यक्ति को उस दर्शन का अर्थ बताओ। जब वह उस जगह के पास आया जहां मैं खड़ा था तो मैं भयभीत हो गया और मुंह के बल गिरा। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, इस बात को समझ लो कि इस दर्शन का संबंध अंत के समय से है। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं भूमि की ओर अपना चेहरा किए पड़ा था और गहरी नींद में था। तब उसने मुझे छुआ और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि बाद में कोप के समय क्या होने वाला है, क्योंकि यह दर्शन ठहराए गए अंत के समय से संबंध रखता है। जो दो सींग वाला मेढ़ा तुमने देखा वह मेदी और फारस राजाओं को दर्शाता है। वह रूखा बकरा यावन का राजा है और उसके आंखों के बीच का वह बड़ा सींग पहला राजा है। वे चार सींग जो एक टूटे हुए सींग के जगह निकल आए, वे चार राज्यों को दर्शाते हैं जो उसी के देश से उदय होंगे, पर उनकी शक्ति पहले के राज्य के समान ना होगी। उनके शासन के बाद के समय में जब विद्रोही अपनी पूरी दुष्टता पर होंगे, तब भयानक दिखने वाला एक राजा का उदय होगा जो षड्यंत्र रचने में माहिर होगा। वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा पर अपने स्वयं की शक्ति से नहीं। वह भयंकर विनाश करेगा और वह जो भी करेगा उसमें सफल होगा। वह उनको नाश करेगा जो शक्तिशाली पवित्र लोग हैं। वह उन्नति करने के लिए छल प्रपंच का उपयोग करेगा और वह अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। जब वे सुरक्षित महसूस करते होंगे तब वह भूतों को नाश कर देगा और राजकुमारों के राजकुमार के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, तो भी वह नाश किया जाएगा, परंतु किसी मानव शक्ति के द्वारा नहीं। शाम और सवेरे का जो दर्शन तुम्हें दिया गया है वह सत्य है, परंतु तुम इसे गुप्त रखो क्योंकि यह बहुत आगे के भविष्य के संबंध में है। मैं दानियेल टूट गया था। मैं बहुत दिनों तक थका हुआ पड़ा रहा। तब मैं उठा और राजा के कामकाज में लग गया। मैं दर्शन से डर गया था। यह समझ के बाहर की बात थी। दानियेल अध्याय 9। दानियेल की प्रार्थना। मेदिया वंश के अहश्वेरोश के पुत्र दारियावेश को बाबेल वासियों के राज्य का शासक ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले साल मैं दानियल ग्रंथों से यिर्मयाह भविष्यवक्ता को दिए गए यहावे के वचन के अनुसार यह समझ गया कि यरूशलेम की निर्जनता 70 वर्षों तक रहेगी। अतः मैं टाट का वस्त्र पहने, राख लगाए, उपवास करते हुए प्रभु परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना और याचना करने लगा। मैंने यहावे अपने परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की और अपने पापों को माना, हे प्रभु, महान और अद्भुत परमेश्वर, आप उनके साथ अपने प्रेम की वाचा को बनाए रखते हैं जो आपसे प्रेम करते और आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमने पाप और गलत काम किए हैं, हमने बुरे काम करके विद्रोह किया है, हमने आपकी आज्ञाओं और कानूनों को नहीं माना है, हमने आपके उन सेवक भविष्य वक्ताओं की बातों को नहीं सुना जिन्होंने आपके नाम से हमारे राजाओं, हमारे राजकुमारों और हमारे पूर्वजों और देश के सारे लोगों से बातें की। हे प्रभु, आप धर्मी हैं, परंतु आज हम बहुत लज्जित हैं। यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी और सब इज़राइली जो पास और दूर हैं, हमारे विश्वासघात के कारण आपने उन्हें सब देशों में तितर बितर कर दिया है। हे यहावे, हम और हमारे राजा, हमारे राजकुमार और हमारे पूर्वज बहुत लज्जित हैं, क्योंकि हमने आपके विरुद्ध पाप किया है। यद्यपि हमने आपके विरुद्ध विद्रोह किया है, तो भी हे प्रभु हमारे परमेश्वर, आप दयालु और क्षमाशील हैं। हमने यहावे हमारे परमेश्वर की बातों को नहीं माना है या उन कानूनों का पालन नहीं किया है जिसे उन्होंने अपने सेवक भविष्य वक्ताओं के जरिए हमें दिया था। सारे इज़राइल ने आपके कानून का उल्लंघन किया है और आपकी बातों को मानने के बदले उससे दूर हट गए हैं। इसलिए परमेश्वर के सेवक मोशे के कानून में लिखित शाप और ठहराया गया दंड हमारे ऊपर उंडेल दिया गया है, क्योंकि हमने आपके विरुद्ध पाप किया है। आपने हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति लाकर हमारे और हमारे शासकों के विरुद्ध कहे गए वचन को आपने पूरा किया है। आकाश के नीचे सारी पृथ्वी पर ऐसी विपत्ति और कहीं नहीं पड़ी जैसी विपत्ति यरूशलेम में पड़ी है। जैसा कि मोशे के कानून में लिखा है, ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, फिर भी हमने ना तो यहावे हमारे परमेश्वर का अनुग्रह पाने का यत्न किया है और ना ही अपने पापों को छोड़कर आपकी सच्चाई पर ध्यान दिया है। इसलिए यहावे हमारे ऊपर विपत्ति लाने में नहीं हिचकिचाए, क्योंकि यहावे हमारे परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उन सब बातों में वे धर्मीपन दिखाते हैं। तो भी हमने उनकी बातों को नहीं माना, और अब हे प्रभु हमारे परमेश्वर, जिसने अपने बलवान हाथ से अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया और अपने लिए एक नाम स्थापित किया जो आज तक बना हुआ है, परंतु हमने पाप किया है, हमने दुष्टता ही की है। हे प्रभु, आप अपने सारे धर्मी कामों को ध्यान में रखते हुए अपने क्रोध और कोप को यरूशलेम शहर से दूर करिए, जो आपका शहर और आपका पवित्र पर्वत है। हमारे पापों और हमारे पूर्वजों के अपराधों ने यरूशलेम और आपके लोगों को उन सबके सामने उपेक्षा का पात्र बना दिया है जो हमारे आसपास रहते हैं। अब हे हमारे परमेश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना और विनती को सुनिए। हे प्रभु, अपने हित में अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे हमारे परमेश्वर, कान लगाकर सुनिए और आंख खोलकर उजड़े हुए उस शहर को देखिए जो आपके नाम से जाना जाता है। हम इसलिए विनती नहीं कर रहे हैं कि हम धर्मी हैं, पर इसलिए कि आप बड़े दयालु हैं। हे प्रभु सुन लीजिए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु सुनिए और करिए। हे मेरे परमेश्वर, अपने ही हित में विलंब ना कीजिए, क्योंकि आपका शहर और आपके लोग आपके नाम से जाने जाते हैं। 77 जब मैं अपने पाप और अपने इज़राइली लोगों के पाप को मानते हुए बात और प्रार्थना कर रहा था और यहावे मेरे परमेश्वर के सामने उसके पवित्र पर्वत के लिए विनती कर रहा था। जब मैं प्रार्थना में ही था तब गब्रियेल, जिसे मैं पहले दर्शन में देख चुका था, शाम के बलिदान के समय तेज गति से मेरे पास आया। उसने निर्देश देकर मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुम्हें अंतर्दृष्टि और समझने की शक्ति देने आया हूँ। जब तुमने प्रार्थना करना शुरू किया तभी एक आज्ञा दी गई जिसे मैं तुम्हें बताने आया हूँ। क्योंकि तुम बहुत सम्माननीय व्यक्ति हो, इसलिए इन बातों पर विचार करके दर्शन को समझ लो। तुम्हारे लोगों और तुम्हारे पवित्र शहर के लिए 70 ठहराए गए हैं कि वे अपराध करना छोड़ दें, पापों का अंत कर दें, दुष्टता का प्रायश्चित करें, अपने में सदाकाल का धर्मीपन लाए, दर्शन और भविष्यवाणी की बातों पर मुहर लगाई जाए और परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाए। इस बात को जानो और समझ लो, यरूशलेम के फिर से स्थापित और पुनः निर्माण के लिए वचन के निकलने से लेकर अभिषिक्त जन शासक के आने तक 7 और 62 का समय ठहराया गया है। इसका पुनः निर्माण गलियों और एक खाई के साथ होगा, किंतु यह कठिन समय में होगा। 62 के बाद अभिषिक्त जन मार डाला जाएगा और कुछ न होगा। शासन करने वाले के लोग आकर शहर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देंगे। बाढ़ के समान अंत आ जाएगा, अंत तक युद्ध होता रहेगा और उजाड़ का निर्णय लिया जा चुका है। वह बहुतों के साथ एक साथ के लिए एक वाचा की पुष्टि करेगा। 7 के बीच में ही वह बलिदान और भेंट का अंत कर देगा और मंदिर में एक विनाशकारी घृणित वस्तु को स्थापित करेगा जो उजाड़ का कारण होगा। यह तब तक होता रहेगा जब तक कि ठहराए गए समय के अंत में उस पर यह विनाश ना उंडेल दिया जाए। दानियेल अध्याय 10। दानियेल का एक मनुष्य का दर्शन। पारस के राजा कोरेश के शासनकाल के 3रे साल में दानियेल, जिसे बेलशत्सर कहा जाता था, पर एक संदेश प्रकाशित किया गया। यह संदेश सत्य था और इसका संबंध एक बड़े युद्ध से था। संदेश की समझ उसके पास एक दर्शन में आई। उस समय मैं दानियेल 3 तक शोक मनाता रहा। जब तक 3 पूरे ना हो गए तब तक मैंने कोई स्वादिष्ट भोजन ना किया, ना मांस खाया, ना दाख मधु को मुंह से लगाया और ना ही किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का उपयोग किया। पहले माह के 24वें दिन जब मैं महानदी हिद्देकेल के किनारे खड़ा था, तब मैंने देखा कि वहां एक व्यक्ति सन का वस्त्र पहने, कमर पर उपहास, देश का शुद्ध सोने का पट्टा बांधे खड़ा था। उसका शरीर ही फिरोजा के समान, उसका चेहरा बिजली के समान, उसकी आंखें जलती मशालों के समान, उसकी भुजा और पैर चमकते कांसे के किरण के समान और उसकी आवाज एक जनसमूह की समान थी। सिर्फ मुझे दानियेल को ही वह दर्शन दिखाई दे रहा था। जो लोग मेरे साथ थे उन्हें वह नहीं दिखा, परंतु उन पर ऐसा आतंक छा गया कि वे वहां से भागकर छिप गए। इसलिए मैं अकेला रह गया और इस बड़े दर्शन को टकटकी लगाकर देखता रहा। मुझमें कुछ बल ना रहा, मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया और मैं निसहाय हो गया। तब मैंने उसे कहते हुए सुना और जैसे ही मैंने उसकी बातों को सुनी मैं भूमि पर औंधे मुंह पड़ा गहरी नींद में चला गया। तब किसी के एक हाथ ने मुझे छुआ और मेरे थर थराते शरीर को मेरे हाथों और घुटनों के बल खड़ा कर दिया। उसने कहा, हे दानियेल, तुम जो बहुत सम्माननीय व्यक्ति हो, जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उन बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करो और अब खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है। जब उसने मुझसे यह कहा मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे आगे कहा, ए दानियेल, डरो मत। पहले ही दिन से जब तुमने अपना मन समझ प्राप्त करने और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करने के लिए लगाया, तब से तुम्हारी बातें सुनी गई और इसी प्रत्युत्तर में मैं यहाँ आया हूँ। परंतु फारस राज्य का राजकुमार 21 दिन तक मेरा प्रतिरोध करता रहा। तब मुख्य राजकुमारों में से एक मिखाइल मेरी सहायता करने आया, क्योंकि मैं वहां फारस के राजा के पास रोका गया था। अब मैं तुम्हें वह बातें बताने आया हूँ जो भविष्य में तुम्हारे लोगों के साथ होने वाली हैं, क्योंकि इस दर्शन का संबंध आने वाले एक समय से है। जब वह मुझसे यह कह रहा था तो मैं जमीन की ओर चेहरा झुकाकर खड़ा रहा और कुछ बोल ना सका। तब कोई जो एक मनुष्य की तरह दिख रहा था मेरे होठों को छुआ और मेरा मुंह खुल गया और मैं बातें करने लगा। मैंने उससे कहा जो मेरे सामने खड़ा था, हे मेरे प्रभु, उस दर्शन के कारण मैं पीड़ा से भर गया हूँ और मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं आपका सेवक, मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ? मुझ में बल नहीं रहा और मैं बड़ी कठिनाई से सांस ले पा रहा हूँ। तब वह जो एक मनुष्य की तरह दिख रहा था फिर से मुझे छुआ और मुझे बल दिया। उसने कहा, मत डरो, तुम बहुत सम्मानीय व्यक्ति हो, तुम्हें शांति मिले, अब मजबूत रहो, दृढ़ रहो। जब उसने मुझसे बातें की तब मुझे बल मिला और मैंने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, मुझसे बातें करिए, क्योंकि आपने मुझे बल दिया है। इसलिए उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? बहुत जल्दी मैं लौटकर फारस के राजकुमार से लड़ाई करने वाला हूँ, और जब मैं जाऊंगा तब यावन का राजकुमार आएगा। पर पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि सत्य के किताब में क्या लिखा है। तुम्हारे राजकुमार मिखाइल को छोड़ और कोई भी इनसे लड़ने के लिए मेरी मदद नहीं करता। दानियेल अध्याय 11। मादी वंश के राजा दार्यावेश के शासन के पहले साल में मैं उसको समर्थन देने और उसके बचाव के लिए खड़ा हुआ। दक्षिण और उत्तर के राजा, अब मैं तुमको सच्ची बात बताता हूँ, फारस में 3 और राजाओं का उदय होगा और उसके बाद एक चौथा राजा होगा जो दूसरे सब राजाओं से बहुत अधिक धनी होगा। जब वह अपने धन से शक्ति प्राप्त कर लेगा तब वह सब लोगों को यावन राज्य के विरुद्ध भड़काएगा। तब एक पराक्रमी राजा का उदय होगा जो बड़ी शक्ति से राज्य करेगा और उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा। उसके उदय होने के बाद उसका राज्य टूट जाएगा और चारों दिशाओं में बट जाएगा। यह उसके संतानों के पास नहीं जाएगा और ना ही उसके शक्ति का प्रभाव उस राज्य में होगा, क्योंकि उसका राज्य उससे छीनकर दूसरों को दे दिया जाएगा। दक्षिण का राजा शक्तिशाली हो जाएगा, परंतु उसका ही एक सेनापति उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और अपने स्वयं के राज्य पर बड़े शक्ति से शासन करेगा। कुछ सालों के बाद वे सहयोगी बन जाएंगे। दक्षिण के राजा की बेटी उत्तर के राजा के पास एक संधि करने के लिए जाएगी, परंतु उसके पास उसके राज्य की शक्ति ना रहेगी और ना ही उत्तर के राजा के पास कोई शक्ति बचेगी। उन दिनों दक्षिण के राजा की बेटी को उसके शाही रक्षकों और उसके पिता और उसकी मदद करने वाले सहित धोखा दिया जाएगा। उसके परिवार का एक जन उसकी जगह में उठ खड़ा होगा। वह उत्तर के राजा के सेना पर आक्रमण करेगा और उसके किले में प्रवेश करेगा। वह उनसे लड़ेगा और विजयी होगा। वह उनके देवताओं को, उनके धातु की मूर्तियों को और उनके चांदी एवं सोने के बहुमूल्य पात्रों को जब्त कर लेगा और अपने साथ मिस्र देश ले जाएगा। कुछ वर्षों तक वह उत्तर के राजा को अकेला छोड़ देगा। तब उत्तर का राजा दक्षिण के राजा की सीमा का अतिक्रमण करेगा, परंतु अपने ही देश को लौट जाएगा। उसके बेटे युद्ध की तैयारी करेंगे और एक बड़ी सेना इकट्ठा करेंगे जो न रोके जा सकने वाले बाढ़ के समान तेजी से आगे बढ़ेंगे और लड़ाई को उसके किले तक ले जाएंगे। तब दक्षिण का राजा क्रोधित होकर आगे बढ़ेगा और वह उत्तर के राजा से लड़ाई करेगा और उत्तर का राजा एक बड़ी सेना खड़ी करेगा, परंतु वह हार जाएगा। जब इस बड़ी सेना को हरा दिया जाएगा तब दक्षिण के राजा मन घमंड से भर जाएगा और कई हजार लोगों को मार डालेगा, तो भी वह विजयी बना ना रह सकेगा, क्योंकि उत्तर का राजा एक दूसरी सेना खड़ी कर लेगा जो उसके पहले की सेना से बड़ी होगी और कई सालों बाद वह पूरी तैयारी के साथ एक बड़ी सेना को लेकर आगे बढ़ेगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण के राजा के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तुम्हारे अपने लोगों के बीच जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं वे इस दर्शन के पूर्ति में विद्रोह करेंगे, किंतु वे सफल ना होंगे। तब उत्तर का राजा आकर सैनिकों का घेरा डालेगा और एक किला वाले शहर पर कब्जा कर लेगा। दक्षिण की सेना में विरोध करने की शक्ति ना होगी, और तो और उनके सबसे अच्छे सैन्य दलों के पास भी सामना करने की शक्ति ना होगी। आक्रमणकारी जैसा चाहेगा वैसा करेगा, कोई भी उसके सामने ठहर ना सकेगा। वह अपने आप को उस सुंदर देश में स्थापित करेगा और उसके पास उसे नाश करने की शक्ति होगी। वह अपने सारे राज्य की शक्ति के साथ आने की ठान लेगा और वह दक्षिण के राजा के साथ एक संधि करेगा और उसके राज्य को जीतने के लिए उस राजा को अपनी एक बेटी विवाह में देगा, परंतु उसकी योजना सफल ना होगी या उससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। तब वह अपना ध्यान समुद्र तटों पर लगाएगा और उनमें से बहुतों को अपने अधिकार में कर लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार का अंत कर देगा और उसके अहंकार के अनुसार उसे बदला लेगा। इसके बाद वह अपने ही देश के किलों की ओर मुंह मोड़ेगा, किंतु वह लड़खड़ा कर गिरेगा और उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तब जो उसकी जगह लेगा वह राजकीय वैभव को बनाए रखने के लिए कर इकट्ठा करने वाला भेजेगा, फिर भी कुछ ही सालों में वह नाश हो जाएगा, पर उसका विनाश क्रोध में या युद्ध में ना होगा। उसके जगह को लेने वाला एक तिरस्कृत व्यक्ति होगा जिसे राज सत्ता से सम्मान ना मिला होगा। जब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे तभी वह राज्य पर आक्रमण करेगा और षड्यंत्र करके उसे अपने कब्जे में कर लेगा। तब एक बड़ी सेना उसके सामने से पलायन कर जाएगी, इसे और वाचा के एक राजकुमार को नष्ट कर दिया जाएगा। उस राजकुमार के साथ एक समझौता होने के बाद वह छल करेगा और सिर्फ थोड़े ही लोगों के साथ वह शक्तिशाली हो जाएगा। जब धनी राज्य सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे तभी वह उन पर आक्रमण करेगा और ऐसी सफलता प्राप्त करेगा जैसी ना तो उसके बाप दादों और ना ही उसके पूर्वजों ने प्राप्त की थी। वह लूटी और छीनी गई चीजों और संपत्ति को अपने अनुयायियों के बीच बांट देगा। वह किलों को जीतने के लिए षड्यंत्र करेगा, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए। एक बड़ी सेना लेकर वह दक्षिण के राजा के विरुद्ध अपनी शक्ति एवं साहस लगा देगा। दक्षिण का राजा भी एक बड़ी और शक्तिशाली सेना लेकर युद्ध करेगा, किंतु उसके विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र के कारण वह ठहर ना सकेगा। जो राजा के द्वारा दिए गए भोजन को खाया करते थे वे ही उसे नाश करने की कोशिश करेंगे। उसकी सेना भगा दी जाएगी और बहुत सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे। दोनों ही राजा अपने मन में बुरी बातें रखकर एक ही मेज पर बैठेंगे और एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, जिससे कोई फायदा ना होगा, क्योंकि ठहराए गए समय पर अंत आ जाएगा। उत्तर का राजा बहुत संपत्ति के साथ अपने देश को लौट जाएगा, परंतु उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध लगा रहेगा। वह इसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा और तब वह अपने देश लौट जाएगा। निर्धारित समय पर वह फिर से दक्षिण पर आक्रमण करेगा, परंतु इस समय परिणाम पहले से अलग होगा। पश्चिमी समुद्र तट के जहाज उसका विरोध करेंगे और वह हिम्मत हार जाएगा। वह लौटेगा और पवित्र वाचा के विरुद्ध अपना गुस्सा दिखाएगा। वह लौटेगा और उन पर कृपा करेगा जो पवित्र वाचा को छोड़ देंगे। उसकी सशस्त्र सेनाएं मंदिर के किले को अपवित्र करने के लिए आगे बढ़ेंगी और प्रतिदिन चढ़ाए जाने वाला बलिदान बंद कर दिया जाएगा, तब वे घृणित वस्तु की स्थापना करेंगे जो उजाड़ का कारण बनता है। लुभावने शब्दों से वह उनको भ्रष्ट करेगा जो वाचा को तोड़ दिए होंगे, पर जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे दृढ़ता से उसका विरोध करेंगे। वे जो बुद्धिमान हैं बहुतों को समझाएंगे, हालांकि कुछ समय के लिए वे तलवार से मारे जाएंगे या जला दिए जाएंगे या पकड़ लिए जाएंगे या लूट लिए जाएंगे। जब वे गिरेंगे तो उन्हें बहुत थोड़ी मदद मिलेगी और बहुत लोग जो ईमानदार नहीं हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। बुद्धिमान लोगों में से कुछ लड़खड़ाएंगे ताकि अंत समय के आने तक उन्हें स्वच्छ, शुद्ध और दाग रहित किया जाए, क्योंकि अंत निर्धारित समय पर होगा। अपने आप को उन्नत करने वाला राजा, राजा जैसा चाहेगा वैसा करेगा। वह अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा करेगा और देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अनसुनी बातें कहेगा। वह तब तक सफल होता रहेगा जब तक कि कोप का समय पूरा ना हो जाएगा, क्योंकि जो ठहराया गया है वह अवश्य पूरा होगा। वह ना तो अपने पूर्वजों के देवताओं के प्रति कोई सम्मान दिखाएगा और ना ही वह स्त्रियों की इच्छा की चिंता करेगा और ना किसी देवता का सम्मान करेगा, पर वह अपने आप को उन सबसे ऊपर ठहराएगा। उनके बदले वह किलो के एक देवता को सम्मानित करेगा, एक ऐसा देवता जिससे उसके पूर्वज भी अनजान थे। वह उस देवता का सम्मान सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्नों तथा कीमती उपहारों से करेगा। वह एक विदेशी देवता की सहायता से सबसे शक्तिशाली किलो पर आक्रमण करेगा और वह उन्हें बहुत सम्मानित करेगा जो उसे राजा स्वरूप स्वीकार करेंगे। वह उन्हें बहुत से लोगों के ऊपर शासक नियुक्त करेगा और एक दाम लेकर भूमि को वितरित करेगा। अंत के समय में दक्षिण का राजा उसको युद्ध में लगाए रखेगा और उत्तर का राजा भी रथों, घुड़सवारों और एक बड़े पानी जहाज के बेड़ों के साथ उस पर आक्रमण करेगा। वह बहुत से देशों पर आक्रमण करेगा और बाढ़ के पानी की तरह उनमें से होता हुआ निकल जाएगा। वह सुंदर देश पर भी आक्रमण करेगा, बहुत से देशों का अंत हो जाएगा, परंतु एदोम, मोआब और अमोन के अगुओं को उसके हाथ से बचाया जाएगा। वह कई देशों पर अपनी शक्ति का विस्तार करेगा, मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र देश के सोने और चांदी के खजानों और सब बहुमूल्य चीजों को अपने अधीन कर लेगा और लीबिया तथा कूश देशवासी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। किंतु पूर्व और उत्तर दिशाओं से आने वाले समाचार को सुनकर वह बेचैन हो जाएगा और बहुत क्रोधित होकर वह बहुतों को नाश करने और उनका अस्तित्व मिटाने को निकल पड़ेगा। वह अपना राजकीय तंबू समुद्र और सुंदर पवित्र पर्वत के बीच खड़ा करेगा, तो भी उसका अंत हो जाएगा और कोई भी उसकी सहायता करने नहीं आएगा। दानियेल अध्याय 12। अंत का समय। उस समय मिखाएल महान राजकुमारों का उदय होगा जो तुम्हारे लोगों की रक्षा करता है। तब ऐसी विपत्ति का समय होगा जैसे जनताओं के उत्पन्न होने से लेकर अब तक कभी हुआ ना होगा। पर उस समय तुम्हारे लोगों में से हर वह व्यक्ति बचाया जाएगा जिसका नाम पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाएगा। मरे हुए लोगों के समूह जो भूमि में दफनाए गए हैं वे जी उठेंगे, कुछ तो अनंत जीवन के लिए तथा अन्य लज्जा और अनंत अपमान के लिए। जो बुद्धिमान है वे आकाश के ज्योति के समान चमकेंगे और जो बहुतों को धर्मीपन की ओर ले जाते हैं वे तारों के समान सर्वदा चमकते रहेंगे। परंतु हे दानियेल, तुम अंत समय के आते तक इस पुस्तक की बातों पर मोहर लगाकर इसे बंद रखो। बहुत से लोग ज्ञान बढ़ाने के लिए इधर उधर जाएंगे। तब मैं दानियेल ने देखा कि वहां दो और व्यक्ति खड़े थे, एक नदी के इस किनारे पर और एक नदी के उस किनारे पर। उनमें से एक ने मलमल कपड़े पहने उस व्यक्ति से कहा, जो नदी के पानी के ऊपर था, इसके पहले कि ये अचंभित करने वाली बातें पूरी हो, और कितना समय लगेगा? वह व्यक्ति जो मलमल के कपड़े पहना था और नदी के दानी के ऊपर था, उसने अपना दाहिना हाथ और अपना बायां हाथ आकाश की ओर उठाया, और मैंने सुना कि वह सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर यह कह रहा था, यह एक समय, समय और आधे समय के लिए होगा, जब आखिर में पवित्र लोगों की शक्ति खत्म कर दी जाएगी, तब ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। मैंने ये बातें सुनी पर ना समझा, इसलिए मैंने पूछा, हे मेरे प्रभु, इन सब बातों का परिणाम क्या होगा? उसने उत्तर दिया, हे दानियेल, तुम जाओ, क्योंकि अंत समय आने तक के लिए इन बातों पर मोहर लगाकर इन्हें बंद कर दिया गया है। बहुत से लोग शुद्ध, दाग रहित और स्वच्छ किए जाएंगे, किंतु वे जो दुष्ट हैं, वे दुष्टता ही करते रहेंगे। दुष्टों में से कोई भी ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे समझेंगे। जब से प्रतिदिन का बलिदान बंद कर दिया जाएगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिनों का समय होगा। धन्य है वह जो इंतजार करता है और 1335 दिनों के अंत तक पहुंचता है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम अंत के आने तक जाओ, तुम विश्राम करोगे और उन दिनों के अंत में तुम अपना निर्धारित उत्तराधिकार पाने के लिए खड़े होगे।